तंत्र में वाम मार्ग। अब अगर हम किसी भी तंत्र विज्ञान के बाहरी अंगों को और विशिष्ट उनकी जो साधना प्रणाली है उसको विचार कर छोड़कर उसके मूल सिद्धांतों को देखें तो सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि वैदिक मार्ग है और उसमें तंत्र मार्ग सर्वदा अलग है, भिन्न है, और इससे दक्षिण और वाम मार्ग ये दोनों ही मार्गों में अनुभूति के अनेक और विविध फल माने गए हैं। दक्षिण मार्ग का नाम है आनंद या आनंद का मार्ग है और वाम मार्ग का मार्ग भोग का मार्ग है, पर दोनों ही मार्गों में अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय शो द निरविंको शोर। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे तंत्र में वाम मार्ग। पहले एपिसोड में हमने बात की थी सीरीज में के तंत्र क्या है, आज तंत्र में वाम मार्ग क्या है, जो कि मैंने अभी कहा कि तंत्र की मूलभूत दो शाखाएं हैं, एक है दक्षिण मार्ग, एक है वाम मार्ग। दक्षिण को आनंद का मार्ग भी कहते हैं और वाम मार्ग को भोग का मार्ग भी कहते हैं। तो चलिए आज इस पर एक विस्तृत जानकारी देने का एक हल्का सा मेरा छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास के लिए मैंने एक पुस्तक का सहारा लिया है। बहुत ही अद्वितीय पुस्तक है तांत्रिक बहल जी की, तंत्र की गोपनीय शक्ति साधना। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय किताब है तंत्र के ऊपर, तांत्रिक बहल जी ने लिखी है, जो राजा पॉकेट बुक से पब्लिसाइज की गई है। और राजा पब्लिक बुक जो है ये लगभग दिल्ली के है, मेन रोड बुराड़ी पर आता है दिल्ली पर। तो ये बात रही उस पवित्र पुस्तक की और उसी के कुछ अंश को यहाँ सारभूत लेकर मैं बात करूँगा तंत्र में वाम मार्ग की तरफ। भारतवर्ष में आज एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति प्रचलित है जिसका जन्म प्रकृति से एक महान तत्व से और प्रकृति की प्रचंड शक्ति से होता है। यह तंत्र की एक पवित्र पद्धति है, क्योंकि आज तंत्र की जहाँ बात की जाती है लोग उसको एकदम नेगेटिव के फॉर्म में देखते हैं। तंत्र में पीछे से आकर कई बार ऐसी बातें जुड़ गई हैं जिसके कारण लोग तंत्र को बदनाम करने पे तुले हुए हैं और तंत्र को एक गंदी नज़र से देखते हैं। विशेषकर तंत्र के वाम मार्ग में कुछ ऐसी बातें आ गई जिसको अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं है, पाप पुण्य का कोई विचार ना रहा, बल्कि उसको सद्धर्म की स्थापना करने के नाम पर केवल कामाचार और व्यभिचार का एक रूप बना दिया गया और उसको एक व्यभिचार का पंथ बता दिया गया। तथापि मूलतः तंत्र एक बहुत ही बड़ी वस्तु है, बलवती वस्तु है, बलवती पद्धति मैं बोलूँगा। उसके मूल में ऐसी भावनाएं थी जो मूलतः सत्य ही थी। इसके दक्षिण और वाम मार्ग, जैसे मैंने कहा दोनों ही मार्ग एक बड़ी गंभीर अनुभूति के फल पाए गए हैं। दक्षिण और वाम, इन शब्दों को जो प्राचीन अर्थ है वे यही है कि एक ज्ञान का मार्ग है, दूसरा आनंद का मार्ग है। साधक में जो प्रकृति रहती है वह अपनी शक्तियों, अपने तत्वों और संभावना के प्रयोग से विवेक से चलना और इस प्रकार अपने आप को मुक्त करना दक्षिण का मार्ग है। और उस प्रकृति का अपनी शक्तियों, अपने तत्वों और संभावनाओं के प्रयोग में जो आनंद की स्थिति बनाई रहती है और एक प्रकार से स्वयं को मुक्त करना, यह वाम का मार्ग है जिसको वाम मार्ग कहते हैं। पर इन दोनों मार्गों में यही हुआ कि अंत में लोग इसके मूल सिद्धांत को भूल गए और इसके बाहरी रूप को बिगाड़ दिया और उन सब का एक गिरावट यानी एक प्रकार से अधोगति शुरू हो गई। अगर हम तंत्र विज्ञान के बाहरी अंगों और विशिष्ट कर्म प्रणालियों को छोड़कर उसके मूल सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को देखें तो सबसे पहले सामने आती है वैदिक मार्ग, जो सर्वदा तंत्र से अलग ही है। वैदिक संप्रदाय जितने भी हैं उन सब के मूल में वेद, और वेद को भी मैं विशेष रूप से वेदांत ही है। वेद का जो अंतिम चरण है, अंतिम भाग है, उसको वेदांत कहते हैं। यह वेदांत की ही शक्ति का मार्ग है और मार्ग नहीं, यह ध्यान भी नहीं, सबसे श्रेष्ठ ध्यान मार्ग है, क्योंकि यह शक्ति का ध्यान है। शक्ति स्वयं प्रकृति है, प्रकृति देवी, और शक्ति शक्तिमयी भी है, विश्व की अधिष्ठात्री देवी भी है। यह सर्वसम्मत संकल्प शक्ति का रहस्य, उसकी कार्य पद्धति, उसका तंत्र जानकर उसका प्रयोग करके ही तांत्रिक ने प्रभुता, पूर्णता, मुक्ति और परमानंद की साधना की। नामात्मक रूप से तांत्रिकों ने कठिनाई से पीछे हटने के बजाय उसका सामना किया और उसको पकड़ा और उसे जीत लिया, परंतु अंत में प्रकृति स्वभाव अनुसार तांत्रिक का जो तंत्र का जो मूल सिद्धांत है उसके आडंबर में लुप्त हो गया। केवल कुछ विधि विधान और गोपनीय विद्या के कुछ यंत्र और मंत्र ही रह गए। इन विधि विधानों में और यंत्रों में अगर ठीक प्रकार से हम काम लें तो आज में इसकी शक्ति है वो बहुत ही प्रत्यक्ष है, पर तांत्रिक और तंत्र का जो मूल हेतु था मुक्ति वो दूर हट गया। तंत्र शास्त्र का मुख्य सिद्धांत रहा है शक्ति पूजा, अब शक्ति पूजा में ही सब कुछ प्राप्त करने की अमोघ शक्ति है। पर यह एक छोर की बात है, दूसरे छोर की बात तो वेदांत में ही हमको मिलती है। शक्ति केवल माया मरीचिका है और इस कर्मरूप प्रकृति को धोखाघड़ी से मुक्त करने का साधन भगवान की खोज करना ही है। क्योंकि जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र वे अलग अलग पद्धतियाँ संप्रदाय रहे, उन सबका एक ही मार्ग है, एक ही उद्देश्य है, वो है मुक्ति। मानव जीवन से इस 84 लाख योनियों से मुक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है, ना कि पैसे कमाने के लिए और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब मैं बात करता हूँ शक्ति की। शक्ति नाम की वस्तु का प्रत्येक मनुष्य को अनुभव तो रहता ही है। कोई भी कार्य शक्ति के बिना नहीं हो सकता। एक मनुष्य रोगी होकर बिछौना पर पड़ जाता है, प्रतिदिन उसका रोग बढ़ने के कारण वह अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता। एक दिन उसका मित्र उसे देखने के लिए आया और घर कर दरवाजे पर खड़ा होकर पुकारने लगा, मित्र जरा तनिक तो बाहर तो आओ। रोगी ने सैया पर ही उत्तर दिया, मुझे अपने बिस्तर से उठ पर बाहर आने की जरा भी शक्ति नहीं है, तुम भीतर आ जाओ। इस प्रकार रोगी मनुष्य के कथन से यह स्पष्ट हम जान पाते हैं कि शक्ति एक विशिष्ट वस्तु है जिसके बिना वह बिस्तर से उठकर बाहर नहीं आ सकता। रोगी मनुष्य की शक्ति जैसे जैसे क्षीण हो जाती है, उसके जीवन की जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है और रोगी मनुष्य जीवित होते हुए भी कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होता। शक्ति के बिना उठना बैठना चलना फिरना जो भी क्रियाएँ हैं वह हो ही नहीं सकती, और शक्ति के द्वारा ही सब कार्य हो सकते हैं। शक्ति ही सब काम हो सकते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है। 4 मास बीते पर वही मनुष्य रोग से मुक्त हो सक गया और शरीर में पुनः शक्ति की संरचना हो गई। उसी समय उसका मित्र फिर बुलाने आया और द्वार पर आकर पहले के समान बाहर आकर पुकारा। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, शक्ति होते हुए मुझे बाहर आने की इच्छा नहीं है, तुम्हें ही भीतर आ जाओ। यह बात स्पष्ट जान पड़ता है कि उसमें शक्ति है, परंतु इच्छा ना होने के कारण वह अपने घर से अपने बिस्तर से बाहर नहीं आया। प्रत्येक कार्य में करने में शक्ति का इच्छा के अनुसार प्रयोग करना पड़ता है और शक्ति स्वतंत्र नहीं है, और यह शक्ति बिना कोई काम नहीं हो भी सकते, ये भी सत्य है। इससे यह प्रमाण हो जाता है कि शक्ति के प्रत्येक कार्य सिद्ध होते ही हैं। तंत्र शास्त्र में भी यही विश्वास है और तांत्रिक इसीलिए शक्ति का साधक होता है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए शरीर में भिन्न भिन्न और निम्न गुणों की भी आवश्यकता होती है। प्रकृति से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई और 5 महाभूतों से प्रत्येक सत्वगुण से 5 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण 5 महाभूतों से सत्वगुण से अंतकरण की उत्पत्ति हुई और 5 महाभूतों के प्रत्येक रजोगुण से वाणी और जो कर्मेंद्रिय है उसकी उत्पत्ति हुई। संपूर्ण महाभूतों से रजोगुण के अंश से प्राणों की उत्पत्ति हुई और वृत्ति के भेद से 5 प्राण जो प्राण के ही 5 अंग माने गए हैं, प्राण से जैसे प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन नामों को हम पुकारते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि, इन 17 तत्वों के मेल से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। अब यह सूक्ष्म शरीर में मैं हूँ ऐसा अभिमान वाला जीव उत्पन्न रहता है और इसी को तेजस कहलाते हैं। इस जीव के भोग के लिए भोग के पदार्थ और भोग के योग्य शरीर के लिए परमेश्वर ने 5 महाभूतों का पंजीकरण किया, अर्थात एक एक करके 5 भेद से 25 विभाग कर दिए गए। इन 25 विभागों से विभुक्त हुए 5 महाभूतों से ब्रह्मांड की रचना हुई और ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन यानी कि 14 भुवन और विभिन्न भुवनों में रहने योग्य यह स्थूल शरीर की रचना की गई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यह शायद मेरा विषय नहीं है कि इस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, पर यह जानना आवश्यक है कि कामाचार में बलि की ओर जाना चाहिए नहीं, या जो वाम मार्ग में बलि की जो प्रथा है, जो कि मैं इसको योग्य नहीं मानता। मैं मानता हूँ चाहे वो शक्ति में काली हो, दुर्गा हो, या छिन्नमस्ता हो, या बगलामुखी हो, कोई भी स्वरूप हो, वो तो एक माता है और माता कभी भी किसी की बलि मांगना सही नहीं समझती। पर तंत्र के विद्वान क्या कहते हैं इस पर हम देखते हैं। साधना के 16 उपचारों में बलि को एक प्रधान उपचार माना गया है और इसके बिना साधना पूरी नहीं होती। इसका कारण यह है कि साधक अगर साधना के अंत में अपने इष्ट देव से या इष्ट देवी से अपना सब कुछ बलिदान देकर अपना भेदभाव मिटा न दिया जाए तो वो उपास्य में विलीन न हो गया। इसीलिए कहा गया शिवो भूत्वा शिवेन भजेत, यह भाव मुझे प्राप्त नहीं हुआ, दासोहम का दास नष्ट होकर सोहम ही न रह गया तो साधना पूर्णता क्या हुई। इसी कारण बलि का विधान है, बलि के बिना भी माँ अम्बा प्रसन्न नहीं होती ऐसा कहते हैं। पर यहाँ जहाँ मैं समझ पाता हूँ, लेखक कहते हैं शायद अहंकार की नष्ट होने की, अहंकार की बलि देने की बात की गई, क्योंकि मूलतः तंत्र में बलि का चार प्रकार होता है। सबसे उत्तम बलिदान अपने अहंकार होता है, जो तामसिक है, तामसिक अहंकार कहलाता है। किसी के संहार, मारण, मोहन और वशीकरण आदि के लिए साधना जो होती है वो तामसिक है। साधना में भी दक्षिणाचार के अनुकूल पशु बलि नहीं मानी गई, उसमें कुष्मांड, ईख, नींबू आदि की बलि बताई गई है। भौतिक वस्तुओं की, याद रखिए, किसी भी प्राणी की हिंसा के लिए तंत्र में कोई स्थान नहीं है। लोगों ने जो बताया रखा है वो बिल्कुल गलत है। केवल वामाचार के अनुकूल राजसिक पूजा में बुरी प्रवृत्तियों को बलि का विधान बताया गया है। काम और क्रोध रूपी ये दोनों विनाशकारी जो पशु हैं, इनका बलिदान का ना यह उपासना का मुख्य आधार माना जाना चाहिए। यही शास्त्रों का बलिदान का रहस्य है। पशु की बलि का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांस किसी भी घास या पत्थर से पैदा या नहीं हो सकता। मांस रक्त से बनता है और वह मांस हिंसा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, और यह हिंसा करना शास्त्र के विरुद्ध है, और शास्त्र कभी भी हिंसा को प्रधानता कभी नहीं देता। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया कि जब यज्ञ का विचार किया गया और यह प्रश्न आया कि यज्ञ में पशु हिंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उस समय उस ऋषियों ने यही राय दी कि पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए। बलि के प्रसंग में जो अज शब्द का प्रयोग हुआ है, उसको लोग बकरा के अर्थ में ग्रहण करते हैं, किंतु 3 वर्ष के बीजों का नाम भी अज है। ठीक है, 3 वर्ष का जो बीज होता है उसका भी हम अज कहते हैं, और अज को बकरा भी कहते हैं, पर वहाँ पर बकरा को अर्थ मांस लोलुपता से लोगों ने डाल दिया। जब कोई साधक साधना की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके मार्ग में अनेक रोड़े आते हैं, कई व्यक्ति उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर पहुँचना है तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपको इन सभी बातों को ठोकर मारते हुए अपनी राह पर चलना चाहिए, तो भविष्य में निश्चित आपको अपने मार्ग पर प्रशस्त होना ही पड़ेगा। आज तंत्र के नाम पर सबसे अधिक ठगी हो रही है, और इसीलिए तंत्र कहीं ना कहीं बदनाम हुआ है, और इसीलिए तंत्र का प्रयोग किए जाने वाले वर्तमान युग के तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव और दुर्भाव अधिक माना गया है। अतः सबसे अधिक तांत्रिक प्रयोग ही प्रचलन में आए हैं, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। साधनाएं चूंकि अधिक समय तक चलने वाली होती है और उसमें बहुत जटिल नियम पालन करने होते हैं, उनकी विधियाँ बहुत परिश्रमी होती है, अतः लघु तांत्रिक प्रयोग करना ही अधिक प्रचलन में आ गए। यह छोटे छोटे तांत्रिक प्रयोग एक प्रकार से साधना की विधियों का छोटा सा स्वरूप है। जिस प्रकार वाम मार्ग मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली है, उसी प्रकार उन प्रयोगों का प्रभाव में कोई शंका नहीं रह जाती। यानी छोटे भी उसके जो उसको हम कहते हैं काम्य प्रयोग, वो काम्य प्रयोग के उतने ही प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण हेतु कुंभ वाम मार्ग के तांत्रिक एक प्रयोग बता रहे हैं, उसमें अनेक बार करके देखे गए हैं। घर से चलते समय से लेकर जहाँ तक आपको जाना हो वहाँ पहुँचने तक ओम क्रीम 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 क्रीम, ये 4 बार क्रीम हुआ, ओम क्रीम 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 क्रीम, ठीक है, इस प्रकार जपते हुए चले जाए, आपका काम बन जाएगा। दिन में केवल एक ही बार ये प्रयोग करो। जब घर से निकले तो एक नींबू ले ले, उस नींबू के 2 टुकड़े कर दे। सड़क के पार करते समय एक टुकड़ा आगे और एक टुकड़ा सिर के ऊपर से पीछे की तरफ फेंके और आप काम पर चले जाए, हर प्रकार की आपकी बाधा पूरी निकल जाएगी। अब घर से चलते समय आटे की लोई में घी लगवा कर उसमें एक लच्छेदार पराठा बनाकर पीले वस्त्र में बांध दे। 2 चौराहे पर पार करने पर जहाँ कौए बैठे हो तब उस रोटी को वहाँ डाल दे, आपका जो काम है वो बन जाएगा। एक और उपाय तंत्र की अद्भुत है, सरसों के तेल में हल्दी, ज्वार का आटा, घी, मुर्दा शंख पीस कर, जो शंख है उसको पीस कर 108 मंत्रों से शरीर पर सर्वांग लेप करने से ये एक प्रकार की सिद्धि है, जिसको भी वह देखेगा वह वश में हो जाता है। फिर एक और है, काली मिट्टी को जल में धोकर लेप बनाएं और इसमें दुर्वा पीस कर हल्दी से पीस कर मिलाएं। इससे शरीर पर 108 मंत्रों से अभिमंत्रित का लेप करने से सभी लोग उस साधक पर मुग्न हो जाते हैं, मुग्न यानी कि सम्मोहित हो जाते हैं। फिर एक और है जो कि इसको मैं ठीक नहीं मानता, वशीकरण की, योनि रक्त में गोरोचन एवं केले के रस को मिलाकर अभिमंत्रित करें। इसका तिलक करने से जो भी साधक को देखेगा वह वशीभूत हो जाएगा। आगे तंत्र में प्रयोग एक और सुंदर दी है, माल्टी के पुष्प को सरसों के तेल में पकार कर योनि पर लगा देने से और समागम करने से पुरुष वशीकरण होता है, पर यह केवल पति पत्नी के लिए है, ना कि पर पुरुष या पर स्त्री के लिए है। अनार के पंचांग और सफेद सरसों को पीस कर अभिमंत्रित करके तिलक करने से सभी प्रकार के पुरुष वशीभूत होते हैं। आगे और भी तंत्र में छोटी छोटी क्रिया है, काक गंजा टगर केसर और मैंसिल को चूर्ण बनाकर अभिमंत्रित करके यानी वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित करके स्त्री के सिर पर डाले तो वो वशीभूत होती है। चिताभस्म वच कुट टगर केसर को चूर्ण करके सिर पर डाले और अपने शरीर के पसीने कान का मैल दांत का मैल वीर्य या जीभ का मैल अभिमंत्रित करके जिसको भी खिला दे वह वशीभूत हो जाता है, पर वशीकरण मंत्र से। वहाँ मैं इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण या विवरण देना ठीक नहीं समझता। ये आप जैसे आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से तंत्र की छोटी छोटी क्रिया में कहीं पर भी कोई पशु बलि नहीं है, पक्षी की बलि नहीं है, केवल मटीरियल की बलि दी जाकर उससे एक्टिवेट करा के उससे कार्य सिद्धि की क्रिया संपन्न की जा सकती है। आगे और भी बहुत सारी छोटे मोटे क्रियाएं हैं, जैसे मंगलवार के दिन पान के रस में तालम खाना और मैंथिन मिलाकर उसको पीस कर तिलक करने से वशीकरण किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि तंत्र शास्त्र योग शास्त्र का ही एक प्रकार का विस्तार है और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। तंत्र के मार्ग पर चलने से जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं, जहाँ हम अनुभव करने लगते कि हमारी स्थिति हमारे ही भीतर है और जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तंत्र में ऐसा भी लेख मिलता है कि जाति और धर्म को लेकर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी लोग दीक्षित होने के अधिकारी भी हैं तंत्र में। और तंत्र शास्त्र यह भी उदारता को हमें बाध्य करती है कि हम उनका जितना आदर कर सके करें। इसलिए तांत्रिक प्रयोगों को जनता में इतना प्रचार हो गया कि दूसरे प्रकार के प्रयोग जन मानस में इतना आदर नहीं पा सके जो मुझे लगता है मिलना चाहिए। तंत्र कोई जादू का खेल भी नहीं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा देता है। वह हमें कुंडलिनी योग भी सिखलाता है, उस योग के द्वारा मनुष्य सिद्ध बन सकता है और हमने ऐसे पवित्र आदरणीय ग्रंथों में देखे बिना ही उसको बहिष्कृत कर दिया और हमें इसलिए चाहिए कि तंत्र को सही तरीके से समझे। दीक्षा, तंत्र में दीक्षा से बढ़कर न कोई ज्ञान है, न तप है, न समय है, इसलिए दीक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पर तंत्र में भी दीक्षा के तीन प्रकार है, पहली आती है आणवीय दीक्षा, दूसरी आती है शाक्तीय दीक्षा और तीसरी आती है सांभवी दीक्षा, जो वह तत्काल मुक्ति देने वाली होती है। सांभवी एक मुद्रा भी होती है, तो फिर जो मैंने उस पर आई थिंक एक एपिसोड बनाया है सांभवी मुद्रा पर, जो रील पर भी कई बार आगे गई है और यूट्यूब पर भी आई थिंक मैंने डाला है। तो शास्त्रों के अनुसार मंत्र अर्चन ध्यान आसन स्थापना उपासना आदि से युक्त जो दीक्षा होती है उसको आणवीय दीक्षा कही गई है। सिद्धि के लिए अपनी शक्ति का अवलोकन करके केवल उसी बल पर शिशु अवस्था में दीक्षा ली गई को शाक्तीय दीक्षा कहते हैं और गुरु और शिष्य दोनों परस्पर फलाभी संधि के बिना ही गुरु के आग्रह से और उसके आग्रह मात्र से शिव आज्ञा से शिव का स्वरूप को व्यक्त करने वाली जो दीक्षा है उसको सांभवी दीक्षा कहते हैं। सांभवी मुद्रा नहीं, सांभवी दीक्षा। और सहवागम से परमात्मा शिव जी सांभवी शाक्ति और मानती इस भेद से तीन प्रकार की दीक्षा का तंत्र ग्रंथों में विशेष रूप से सहवागम में इसका उपदेश दिया गया है। गुरु के दर्शन उसके स्पर्श से और संभाषण से भी जीव को बोध होता है कि उसको सांभवी दीक्षा दी गई है या दी जा सकती है, पर ऐसे बहुत विरले होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे पवित्र पुरुष ही इस प्रकार की दीक्षा दे पाते हैं और जो कि आज भी युग में ऐसे पवित्र पुरुष हैं जो सांभवी दीक्षा दे सकते हैं, पर विरले ही हैं। गुरु ज्ञान मार्ग से शिष्य की देह में प्रविष्ट होकर ज्ञान के नेत्र द्वारा जिसको ज्ञान चक्षु भी कहते हैं उसके द्वारा जो उपदेश करता है उस दीक्षा को शाक्तीय दीक्षा भी कहते हैं। मंडल के भीतर कल स्थापना करके जो क्रियावती दीक्षा होती है वह मांत्रिक दीक्षा कहते हैं, तभी संपदा देने वाली जो दीक्षा है उसको मांत्रिक क्रियावती दीक्षा को मांत्रिक दीक्षा कहते हैं। एक वर्ष की उम्र वाली बालिका को संध्या कहते हैं, दो वर्ष की बालिका को सरस्वती, तीन वर्ष की त्रिधा मूर्ति, चार वर्ष की कालिका, पांच वर्ष की होने पर सुभगा, छः वर्ष की बालिका को उमा कहते हैं, सात वर्ष की बालिकी को मालिनी, आठ वर्ष की कन्या को कुब्जा, नौ वर्ष की कन्या को काल सदर्मा, दसवें में अपराजिता, ग्यारहवें में रुद्राणी, बारहवें में भैरवी, तेरहवें वर्ष में उसको महालक्ष्मी, 14वें वर्ष में पीठनायिका, 15वें वर्ष में क्षेत्रज्ञा और 16वें वर्ष में उसको अंबिका मानी गई है। इस प्रकार जब ऋतु का उद्गम ना हो तभी क्रमशः संग्रही करके प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक वृत्ति भेद से कुमारी पूजन करना चाहिए शुद्ध मन से। 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक की बालिका अपने रूप को प्रकाशित करने वाली कुमारी कहलाती है। 6 वर्ष की अवस्था से आरंभ कर 9वें वर्ष तक की जो अवस्था है उस कुमारी साधिका को यथेष्ट साधन माना गया है। 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की अवस्था तक उसे कुलजा समझे और उस समय उसका जगदम्बा मान के पूजन करे। 10 वर्ष से शुरू होकर 16 वर्ष तक हो उस कन्या को युवती जाने और उसे भैरवी मानकर साक्षात भैरवी माता मानकर उसका चिंतन पूजन करे। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष को रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या को पूर्ण पवित्र पूर्ण कन्या कहलाती है और इसके बाद वही महामाया और रजस्वला भी कहलाती है। 12वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक वह सभी तंत्र ग्रंथों में उसे कुमारी का दर्जा दिया गया है। कुमारी यानी साष्टांग माँ पार्वती का स्वरूप है। ये यजमान को चाहिए कि 10 कन्याओं का पूजन करें, उसमें से 2 वर्ष की अवस्था से लेकर 10 वर्ष की पवित्र कुमारी को पूजन करना चाहिए। जो 2 वर्ष की उम्र वाली हो वह कुमारी, 3 वर्ष की को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका समझे, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की नवदुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। इनका मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो श्रेष्ठतम तांत्रिक गुरु हो उनको ये पूजन का विधि ज्ञान होता है। 1 वर्ष वाली कन्या की पूजा से प्रसन्नता नहीं होगी अतः उसका ग्रहण नहीं है और 11 वर्ष के ऊपर वाली कन्याओं का भी पूजन या पूजा ग्रहण करना वर्जित है। जो कुमारी को अन्न, वस्त्र और जल अर्पण करता है उसका फल अक्षुणन और अनंत माना गया है। अर्पण किए हुए वस्त्रों द्वारा सैकड़ों नहीं अरबों वर्षों तक शिवलोक में पूजित होता है वह साधक, और जो कुमारी के लिए पूजा के उपकरणों को देता है उसके ऊपर देवगण भी प्रसन्न होते हैं और उसी के पुत्र रूप में वो प्रकट होते हैं, ऐसे विद्वान मानते हैं। कुमारी पूजन में जाति भेद का विचार नहीं करना चाहिए। जाति भेद करने से मनुष्य नर्क से छुटकारा नहीं पाता। संशय में पड़ा हुआ मंत्र साधक अवश्य ही पातकी होता है और इसीलिए बुद्धि से और विवेक से साक्षात उसको जगदम्बा मानकर उन कुमारी का पूजन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जहाँ कुमारी की पूजा होती है वह पृथ्वी परम पवित्र मानी गई है। सभी बड़े बड़े पर्वों पर कुमारी पूजन करना चाहिए। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, अगर आप रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने भी कुमारी पूजन की थी वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, और एक समय में उन्होंने अपनी पत्नी को शारदा मणि माँ को साक्षात जगदम्बा समझ कर उनकी भी पूजा की थी। अगर आप उनकी जीवनी पूरी विस्तार से पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि से महापूजा करके मंदभाग्य पुरुष भी पूर्ण विजय प्राप्त करता है और पूजन से कुमारी मंत्रों के सिद्धि का फल भी प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। संपूर्ण कर्मों का जो फल है वह केवल कुमारी पूजन से ही होता है और कुमारी पूजा से साधक सिद्धि महान तेज को प्राप्त होता है। उसके ऊपर 10 महाविद्याएं प्रसन्न होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुमारी पूजन मात्र से साधक त्रिभुवन को वश में करता है और उसे परम शांति मिलती है। इस प्रकार कुमारी पूजन समस्त पुण्यों का फल देने वाला है और जो प्रतिदिन विधिपूर्वक कुमारी पूजन करता है उसकी तो भाग्य के ही देवता कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं। पूजित कुमारी जो कुमारियाँ हैं वो शत्रुओं को नष्ट कर डालती हैं। पूजा करने से 9 ग्रह बाधा, रोग, भूत, बैताल, सर्प आदि जो भय है मिट जाते हैं, क्योंकि कुमारी साक्षात योगिनी है, साक्षात जगदम्बा है और विधि युक्त कुमारी पूजन करके ही साधक को भोजन करना चाहिए।